ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से किया अस्वीकार। राष्ट्रीय सभा सदस्यों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए माघ 21 गते चुनाव कराने का सरकार का निर्णय। चुनाव का वातावरण बनाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान में सरकार, राजनीतिक दलों और जेनजेड प्रतिनिधियों के बीच हुआ विचार विमर्श। पालपा की छहरा गांव पालिका पीपल भंजांग में हुई वाहन दुर्घटना में 3 लोगों की मौत और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ व्यापार समझौते का ऐलान। अब समाचार विस्तार से। सुशीला कार्की के नेतृत्व में सरकार गठन और उनकी सिफारिश में हुए प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से अस्वीकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत, न्यायाधीशों सपना मल, कुमार रिग्मी, हरिप्रसाद भुयाल और मनोज कुमार शर्मा की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि अंतरिम सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने बीते भाद्र 27 गते को प्रतिनिधि सभा का विघटन किया था। बता दें कि अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री की नियुक्ति बदर करने और संसद पुनःस्थापना करने के लिए परमादेश की मांग करने के साथ सुप्रीम कोर्ट में 16 याचिकाएं दायर की गई थीं। सरकार ने राष्ट्रीय सभा सदस्यों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए माघ 21 गते रविवार के दिन चुनाव कराने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने यह निर्णय किया। सरकार के निर्णयों के बारे में बताते हुए सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि संघीय संसद के पदाधिकारियों और सदस्यों के पारिश्रमिक और सुविधा संबंधी आयन 2073 में बदलाव करते हुए स्वकीय सचिवालय की दरबंदी घटाने का निर्णय भी सरकार ने किया है। इसके अलावा भी मंत्रिपरिषद बैठक ने कई अन्य निर्णय किये। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के आह्वान में आज सरकार, राजनीतिक दलों और जेनजेड प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय विचार विमर्श हुआ। आगामी फागुन 21 गते के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से राजनीतिक समझदारी बनाने लगायत विषयों में विचार विमर्श केन्द्रित रहा। यह जानकारी प्रधानमंत्री के सचिवालय ने दी। बैठक में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सुशीला कार्की सहित गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल, कानून मंत्री अनिल सिन्हा, शिक्षा मंत्री महावीर पुन और संचार मंत्री जगदीश खरेल सहभागी हुए। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से नेपाली कांग्रेस के डॉ प्रकाश शरण महत, नेकपा एमाले के महेश परतौला और क्षितिज थेवे, नेकपा माओवादी केन्द्र के नारायण काजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन और माधव सापकोटा, रासोपा के स्वर्णिम वागले और निशा डांगी, राप्रपा के राजेन्द्र गुरुंग और मोहन श्रेष्ठ, नेकपा एस के राजेन्द्र पांडे लगायत उपस्थित थे। बैठक में जेन जेड समूह की ओर से मोनिका निरोला, रक्षा बम, पुरुषोत्तम यादव, सामना लावती, खेमराज साउत, उपार्जुन चामलिंग, भोज विक्रम थापा, मिराज ढोंगाना, विवेक दाहाल, जेम्स कार्की, रेहनराज टंगोल, अमित खनाल लगायत ने शिरकत की थी। बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवात मोथा का नेपाल पर प्रभाव पड़ने के कारण कल से शनिवार तक लंबी यात्रा न करने का सुझाव मौसमविदों ने दिया है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कोशी और बागमती प्रदेश के उच्च पहाड़ी एवं हिमालयी क्षेत्रों में कुछ स्थानों में भारी हिमपात की संभावना है। विभाग के मुताबिक इस दरमियान देश की बागमती, कमला, कोशी और कनकाई नदियों और इनकी सहायक नदियों में पानी का बहाव बड़े पैमाने पर बढ़ने की संभावना है। यहां तक कि इनमें पानी का बहाव सतर्कता तह तक पहुंचने के संकेत देखे जा रहे हैं। इसी तरह बागमती प्रदेश के काठमांडू घाटी, काभरी सिंधुपालचोक, दोलखा, मकवानपुर, चितवन, सिंधुली, मध्य प्रदेश के बारा, परसा, सरलाही, रोहथट, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी और कोशी प्रदेश के संखुआ सभा, तापलेजुंग, पांचथर, तेरहथुम, भोजपुर, धनकुटा, इलाम, झापा, मोरंग, सुनसरी जिले होकर गुजरने वाली नदियों में आकस्मिक जल बहाव की संभावना उच्च है। संभावित बारिश और हिमपात के कारण नदी नहरों में आकस्मिक बहाव, भूस्खलन के जोखिम के साथ ही दैनिक जीवन, सड़क एवं हवाई यातायात, कृषि पर्यटन लगायत क्षेत्रों में प्रभाव पड़ सकने की संभावना जताई गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। हिमपात रुकने के बाद मनांग में जनजीवन सामान्य बनता गया है। मौसम में आए सुधार के साथ ही विश्व के सबसे ऊंचे तिलिचो ताल घूमने और थोरांगला भंजांग पदयात्रा में आए पर्यटकों के लिए वातावरण सहज बनता गया है। प्रमुख जिला अधिकारी नवराज पोड्याल के अनुसार आज सुबह से ही सड़क में जमी बर्फ को हटाने के बाद पर्यटक अब लौटने लगे हैं। मिची राजमार्ग पर रात के समय वाहन संचालन पर रोक लगा दी गई है। बीते 18 गते की बाढ़ व भूस्खलन के कारण सड़क का विभिन्न खंड जोखिम भरा होने के कारण शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहन संचालन पर रोक लगाई गई है। ये जानकारी जिला प्रशासन कार्यालय इलाम ने दी है। पालपा की रैना देवी चेहरा गांवपालिका वार्ड नंबर 4 पीपल भंजांग में ईवी वैन की हुई दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ईवी चालक रैना देवी 4 के कमल राय मांझी, वहीं के राम बहादुर गाहा और इसी गांवपालिका के वार्ड नंबर 2 सोमादी के मुक्त बहादुर बुढ़ातो की शामिल हैं। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय पालपा ने दी। बता दें कि वैन सड़क से करीब 500 मीटर नीचे गिरने से यह हादसा हुआ। घटना की जांच की जा रही है। जिनजीट आंदोलन संबंधी जांच आयोग के अध्यक्ष गौरी बहादुर कारकी ने बताया कि भाद्र 24 गते व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्तियों में आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ में शामिल लोगों पर फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग द्वारा आज वीरगंज स्थित जिला प्रशासन कार्यालय में आयोजित विचार विमर्श में अध्यक्ष कारकी ने ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि हथियार लूटपाट करने वालों और जेल से भागे कैदियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को अध्यादेश के जरिए कानून बनाना चाहिए। हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत सिरहा और धनुषा को जोड़ने वाले कमला पुल निर्माण शुरू हुए 14 साल गुजर जाने के बाद भी काम अटका हुआ है। पुल समय पर न बनने के कारण सिरहा और धनुषा वासी नदी पार करने के लिए कामचलाव लकड़ी के पुल का सहारा लेने को मजबूर हैं। उस काठ के पुल से गुजरने के लिए भी उन्हें प्रति व्यक्ति 20 रूपये चुकाने पड़ते हैं। बता दें कि इससे पहले तो उसी पुल से गुजरने के लिए स्थानीय लोगों को 100 रूपये तक देने पड़ते थे। स्थानीय वासियों के अवरोध के कारण काठमांडू घाटी की बंचरी डाडा में कचरा विसर्जन में समस्या आ गई है। कचरा विसर्जन वाले क्षेत्र के प्रभावित स्थानीय वासियों के अवरोध के कारण घाटी से कचरा लेकर पहुंची गाड़ियों को कचरा लेकर ही वापस आना पड़ा। कचरा विसर्जन का काम वैज्ञानिक रूप में किए जाने लगा। विगत में हुई सहमति को क्रियान्वित करने की मांग करते हुए स्थानीय बाशिंदों ने कचरा विसर्जन में अवरोध किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच टैरिफ को लेकर चल रही खींचतान में एक नया मोड़ आया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के शीर्ष सलाहकार किम योंग बॉम के अनुसार दोनों देशों ने ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर लगने वाले शुल्क को 25% से घटाकर 15% करने पर सहमति बना ली है। किम ने यह जानकारी एपीईसी समिट के दौरान मीडिया से बातचीत में साझा की। किम योंग बॉम ने बताया कि इस टैरिफ कटौती के बदले दक्षिण कोरिया ने अमेरिका में $350 अरब निवेश करने की योजना पर हामी भरी है। इसमें दो बड़े हिस्से शामिल हैं। पहला $200 अरब का सीधा नकद निवेश और दूसरा $150 अरब शिप बिल्डिंग सेक्टर में सहयोग के रूप में। हालांकि अभी साफ नहीं है कि यह समझौता ट्रंप और ली के बीच बातचीत से निकला अनौपचारिक कॉमन ग्राउंड है या फिर कोई दस्तखत किया हुआ औपचारिक करार। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में दक्षिण कोरिया पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था। इसके अलावा स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% तक भारी शुल्क भी लगाया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच इस टैरिफ को 15% तक कम करने की सहमति बनी, पर कभी किसी कागज पर औपचारिक साइन नहीं हुए। यही कारण है कि टैरिफ का बोझ लगातार बना रहा। इस निवेश राशि को लेकर दक्षिण कोरिया के अंदर सवाल उठ रहे हैं। कई अर्थशास्त्री इससे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक दबाव वाला सौदा मानते हैं। कई विशेषज्ञों की नजर में यह घोषणा एक कूटनीतिक संदेश पर हो सकती है, क्योंकि जब तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होते तब तक हर दावा सवालों के घेरे में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से किया अस्वीकार। राष्ट्रीय सभा सदस्यों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए माघ 21 गति चुनाव कराने का सरकार का निर्णय। चुनाव का वातावरण बनाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान में सरकार, राजनीतिक दलों और जेनजेड प्रतिनिधियों के बीच हुआ विचार विमर्श। पालपा की छहरा गांवपालिका पीपल भंजांग में हुई वाहन दुर्घटना में 3 लोगों की मौत और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ व्यापार समझौते का ऐलान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।